ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। दिल्ली नगर निगम ने अपने 200 दैनिक सफाई कर्मचारियों को नियमित किया। दिल्ली सरकार ने 14 करोड़ रुपए के जीएसटी रिफंड की धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया। अब तक 1,06,00,000 रुपए बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष तथा दिल्ली सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। भारत रत्न रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्लादेश स्थित पैतृक घर में हुई तोड़फोड़ के विरोध में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायुक्त के बाहर भाजपा का प्रदर्शन। और दिल्ली पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रहे 36 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। दिल्ली नगर निगम ने आज अपने 200 दैनिक सफाई कर्मचारियों को नियमित किया है। निगम महापौर राजा इकबाल सिंह ने दैनिक सफाई कर्मचारियों को पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर निगम के उप महापौर जय भगवान यादव, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा और नेता सदन प्रवेश वाही भी उपस्थित रहे। इस दौरान एक दुर्घटना में पैर गंवाने वाले एक सफाई कर्मचारी के पुत्र को भी निगम में नियमित आधार पर नौकरी का नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम की भाजपा सरकार निगम के सफाई कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है और हर सुख दुख में उनके साथ है। श्री सिंह ने कहा कि स्थायी समिति बनने के कुछ ही समय के भीतर 200 सफाई कर्मचारियों को नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे अस्थायी सफाई कर्मचारियों को भी जल्द ही नियमित किया जाएगा। महापौर ने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखने में निगम के सफाई कर्मचारी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि निगम के सफाई कर्मचारियों ने कोविड महामारी के दौरान भी अपनी जान जोखिम में डालकर शहर की स्वच्छता को निरंतर बनाए रखा। राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय के बाहर अत्याधुनिक मशीनों की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक तकनीक से लैस मशीनों की कार्यकुशलता का संचालन ध्यानपूर्वक देखा और अधिकारियों से उनकी जानकारी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनों की खरीद और तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में आधुनिक मशीन की तैनाती करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। सड़कों के किनारे जमी गंदगी, धूल और मिट्टी राजधानी की हवा को लगातार प्रदूषित कर नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने इस वर्ष के बजट में विशेष प्रावधान किया है, जिसके तहत सड़कों की सफाई के लिए अत्याधुनिक मशीनों की तैनाती की जाएगी। इस अवसर पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा सहित पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से आज दिल्ली सचिवालय में कोरिया एनवायरमेंटल इंडस्ट्री एसोसिएशन के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान हाइड्रोजन मोबिलिटी, स्मार्ट पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, वायु गुणवत्ता सुधार और निगरानी जैसी संयुक्त परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक का उद्देश्य कोरिया के ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंट कार्यक्रम के तहत दिल्ली के ग्रीन एक्शन प्लान को समर्थन देने के लिए संभावित परियोजनाओं पर चर्चा करना था। बैठक के बाद श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार औद्योगिक उत्सर्जन घटाने, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने और जलवायु के अनुकूल ढांचा निर्माण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरिया के प्रतिनिधिमंडल के साथ संवाद कोरिया की उन्नत ग्रीन टेक्नोलॉजी को दिल्ली में लाने का अवसर प्रदान करेगा। दिल्ली सरकार ने 14 करोड़ रुपए के वस्तु और सेवा कर जीएसटी रिफंड की धोखाधड़ी का भंडाफोड़ कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 1,06,00,000 रुपए बरामद किए गए हैं। दिल्ली सरकार के व्यापार और कर विभाग के अनुसार जांच में पता चला कि व्यक्तियों के एक नेटवर्क ने वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में अवैध रूप से जीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए 4 काल्पनिक फर्म बनाई हुई थी। विभाग की जांच में धोखाधड़ी करने वाली फर्मों द्वारा इस्तेमाल किए गए समान पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल पते का उपयोग करने वाली कई संस्थाओं की पहचान की गई है। विभाग ने दिल्ली स्थित संस्थानों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष तथा दिल्ली सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आज दिल्ली भाजपा कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई। एक रिपोर्ट।
इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि 27 वर्षों के बाद दिल्ली में एक उद्देश्य वाली भाजपा की सरकार बनी है, जिसका मुख्य लक्ष्य दिल्ली वासियों की सेवा करना है। श्री पुरी ने इसके लिए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली के भविष्य के लिए मुख्यमंत्री ने जो विजन रखा है वो दिल्ली वालों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। श्री पुरी ने कहा कि देश में मोदी सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में जनता के लिए चलाई गई जन कल्याण की योजनाओं की उपलब्धियां इस प्रदर्शनी में दर्शाई गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथे स्थान पर पहुंचना एक बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष सही मायनों में युग परिवर्तन है। यह 11 वर्ष विश्वास, प्रगति, भरोसे और सामाजिक उत्थान के लिए है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र के 11 वर्ष और दिल्ली के 100 दिन पूरे हुए हैं, जो इस प्रकार की दिल्ली में लगातार डबल इंजन की सरकार का काम कर रही है, उसके परिणाम सबके सामने हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दोगुना गति के साथ विकास होने जा रहा है और सरकार ने जो भी लक्ष्य बनाए हैं सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ जया भारती।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 23 वर्षों बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा ऐतिहासिक बन गई है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी का ये महज एक दौरा नहीं है, बल्कि एक सशक्त संदेश है कि उनके नेतृत्व में भारत आज वैश्विक मंच पर आर्थिक, रणनीतिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक नेतृत्व की नई परिभाषा गढ़ रहा है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से स्पष्ट हो गया है कि अब आर्थिक सहयोग, निवेश विस्तार और वैश्विक साझेदारी देश की विदेश नीति का केंद्र बिंदु बन चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत आज एक आत्मनिर्भर, विश्वसनीय और निर्णायक राष्ट्र के रूप में अपनी वैश्विक पहचान को और मजबूत कर रहा है। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष सुंदर तंवर कल दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद और तिगड़ी गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। श्री बिधूड़ी ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के शुरू होने से स्थानीय नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। भारत रत्न रविंद्रनाथ टैगोर के बांग्लादेश स्थित पैतृक घर में हुई तोड़फोड़ के विरोध में आज दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भाजपा सांसद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधोड़ी और योगेंद्र चंदोलिया भी शामिल रहे। अपने संबोधन में श्री सचदेवा ने कहा कि देश रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान नहीं सहेगा। उन्होंने कहा कि श्री टैगोर वे महान पुरुष हैं जिनके द्वारा लिखे गए दो अलग अलग राष्ट्रगान भारत और बांग्लादेश में गाए जाते हैं। श्री सचदेवा ने कहा कि श्री टैगोर के पैतृक घर पर सुनियोजित तरीके से तोड़फोड़ करना बांग्ला संस्कृति पर हमला करना है।
हम बांग्लादेश दूतावास की तरफ जा रहे हैं, उनको ज्ञापन देंगे कि इस तरह का अपमान हिंदू संस्कृति का बांग्ला संस्कृति का बर्दाश्त नहीं होगा। हमारी सीधी सी मांग है, ऐसी कट्टरपंथी ताकतें जो इस तरह का घिनौनी हरकतें करें उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर सभी लोगों के मार्गदर्शक हैं और आज उनके घर को गिराने वाले लोग क्षमा योग्य नहीं हैं। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की निंदा की। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री चौधरी ब्रह्म प्रकाश की 107वीं जयंती के अवसर पर आज दिल्ली विधानसभा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान श्री ब्रह्म प्रकाश की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया गया। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी अमर विरासत सदैव प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 36 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले के विदेशी प्रकोष्ठ की टीम ने इन बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है, जिनमें 19 वयस्क और 17 बच्चे शामिल हैं। ये बांग्लादेशी नागरिक बिना वैध यात्रा दस्तावेजों, वीजा या परमिट के दिल्ली में रह रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 13 बांग्लादेशी पहचान पत्र भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत आपदा प्रबंधन क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राहत आयुक्तों और आपदा मोचन बलों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत ने पूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि सटीक पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी के माध्यम से राहत और बचाव कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार ने 10 वर्षों में शून्य हताहत का लक्ष्य हासिल करके पूरी दुनिया को चकित कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में आपदा प्रबंधन के इतिहास में मोदी सरकार के 10 साल परिवर्तनकारी दशक के रूप में दर्ज किए जाएंगे।
10 साल के अंदर एनडीएमए, एनडीआरएफ और सीडीआरआई, ये तीन संस्थाओं ने भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनाने के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया। ये हम सब के लिए बड़ा आनंद का विषय। एनडीएमए ने नीति विषयक संरचना करना, शोध कार्य करना, अनेक प्रकार के अभ्यास के लेखों को लोगों तक पहुंचाना, कई एप्स बनाना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन नीति विषयों का एनडीएमए ने बहुत अच्छा किया है।
श्री शाह ने राहत आयुक्तों को 90 दिनों के भीतर अपने राज्य के जिलों के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि नर्सिंग अधिकारी भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा NORCET, जो पहले वर्ष में एक बार आयोजित की जाती थी, अब दो बार आयोजित की जाएगी। इस पहल से नर्सों की समय से भर्ती सुनिश्चित होगी और मरीजों की निर्बाध देखभाल सेवाएं भी सुनिश्चित होंगी। ये नीतिगत बदलाव मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की रणनीतिक योजना के अनुरूप किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने सदस्यों से अनधिकृत एजेंटों के संपर्क से बचने और मुफ्त और सुरक्षित ऑनलाइन सेवाओं के लिए आधिकारिक EPFO पोर्टल का उपयोग करने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि EPFO ने अपने सभी हितधारकों के लिए अपनी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि EPFO के पास एक मजबूत शिकायत निगरानी और निवारण प्रणाली है। वर्ष 2024-25 में EPFO शिकायत प्रबंधन प्रणाली में कुल 16 लाख से अधिक शिकायतें और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली में 1,74,000 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 98% शिकायतों का समय सीमा में निवारण किया गया। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
सरकार ने आज जनगणना कराए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जनगणना दो चरणों में की जाएगी। इसके लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू कश्मीर के बर्फीले इलाकों तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर ये तारीख लागू नहीं होगी। इस तरह से पहले चरण में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से कराई जाएगी। और अब बात मौसम की। राजधानी में कल हुई बारिश वजह से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली नगर निगम ने अपने 200 दैनिक सफाई कर्मचारियों को नियमित किया। दिल्ली सरकार ने 14 करोड़ रुपए के GST रिफंड की धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया। अब तक 1,06,00,000 रुपए बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्ष तथा दिल्ली सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर दिल्ली भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी लगाई गई। भारत रत्न रविन्द्रनाथ टैगोर के बांग्लादेश स्थित पैतृक घर में हुई तोड़फोड़ के विरोध में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर भाजपा का प्रदर्शन। और दिल्ली पुलिस ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 36 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।